नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से फिलिप्पियों नामक पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने परिवार के साथ में रहते हुए, अपने प्रियों के साथ में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से फिलिपियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने हमें एक आदेश दिया था, प्रभु में आनंदित रहो। फिर उसने एक और आदेश दिया, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना में परमेश्वर से निवेदन करो। तो आइए आज हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी नौकरी को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, या किसी प्रकार के कर्ज में या दबाव में है। पिताजी, आप उनकी सहायता करें। आज अपने वचन के द्वारा हमसे हर एक से फिर से एक बार बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम फिर से एक बार अध्याय 4 उसके 6 पद पर विचार करें। आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, यहां पौलुस दो बातों पर बल दे रहा है, किसी भी बात, हर एक बात। अतः मैं इसे यूं समझाता हूं, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना सामर्थ का भेद है। किसी भी बात की चिंता मत करो, पद 4 में पौलुस हमें आदेश देता है, आनंदित रहो। यहां एक और आदेश है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्या इसका अर्थ यह है कि हम सत्य का सामना न करें? क्या हम यह मान लें कि पाप एक सत्य नहीं है, रोग एक सत्य नहीं है, समस्याएं यथार्थ नहीं है? क्या हमें इनकी चिंता नहीं करना है? नहीं, पौलुस कहता है कि हमें इनकी चिंता नहीं करना है, हमें इन सब बातों के लिए प्रार्थना करना है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस आदेश का पालन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चिंता करता हूं, जैसे मेरे भाई भी चिंता करते हैं। हमें चिंता नहीं करने का कारण है कि हमें प्रार्थना करना है, अर्थात हमें जीवन की हर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। एक महिला ने डॉक्टर कैंबल मॉर्गन से पूछा, क्या हमें छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए? डॉक्टर मॉर्गन ने कहा, क्या आप जीवन की कोई ऐसी बात सोच सकती हैं जो परमेश्वर के लिए बड़ी बात हो, जिसे हम बड़ी समस्या समझते हैं? वह परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी छोटी सी छोटी बात भी उसे बता दें। हम विश्वासियों को एक अभ्यास बना लेना है कि प्रार्थना में सब कुछ उसके सामने रख दें, कुछ भी ना बचे। मैं यात्रा करते समय कई बार अपनी सारी बातों को परमेश्वर से कह देता हूं, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हमें हर बात के लिए प्रार्थना करना है, हमें सीखना है। मैं पौलुस के इसी आदेश का, जो हर बात में प्रार्थना करो के संदर्भ में, फेनेलिन मध्य युग के एक योगी की चेतावनी आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखा है, परमेश्वर को अपने मन की हर एक बात बता दो, जैसे कि कोई अपने घनिष्ठ मित्र को अपने मन की सुख दुख सुनाता है। उसे अपने कष्ट सुनाओ कि वह आपको सांत्वना दे, उसे अपनी खुशियां सुनाओ कि वह आपको विनम्र बनाए, उसे अपनी लालसाएं बताओ कि वह उनका शोधन करे, उसे अपनी घृणा बता दो कि वह आपको उन पर विजयी बनाए, उससे अपनी परीक्षाओं का उल्लेख करो कि वह उनसे आपकी रक्षा करे, उसे अपने दिल की चोटों का वर्णन करो कि वह उन्हें चंगा करे, भलाई के प्रति आपकी उदासीनता, बुराई के भ्रष्ट विचार, आपकी अस्थिरता भी उसे बता दें। उसे बता दो कि आपका स्वार्थ कैसे आपको किसी के प्रति अन्यायी बनाता है, निस्सारता कैसे आपको अनिष्ट बनाती है, घमंड कैसे आपको छलिया बनाता है, आदि सब कुछ उसे आप बता दें। मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रकार अपनी सब दुर्बलताएं, आवश्यकताएं, समस्याएं बता दें, तो आपके पास कहने के लिए कमी न होगी। आपके विषय का अंत नहीं होगा, वह लगातार नया होता रहेगा। जिन मनुष्यों में आपस में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें चर्चा विषयों की कमी नहीं होती है। वे शब्दों को चुनकर उपयोग नहीं करते क्योंकि छिपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और न ही वे चर्चा विषयों की खोज करते हैं। वे दिल खोलकर बात करते हैं, वे जो सोचते हैं कह देते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ आबाधित वार्तालाप करते हैं। इस संदर्भ को मैंने वर्षों अपनी बाइबल में रखा और अब भी कभी कभी पढ़ता रहता हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अति धर्मी सुनाई देता हूँ, जब मैं गवाही देता हूँ कि मैं प्रार्थना में प्रभु के समक्ष अपने बोझ डाल देता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैं अपनी हर एक बात उससे कह देता हूँ, तब प्रार्थना के बाद अपने बोझ फिर से उठा लेता हूँ। यही तो मेरी भी समस्या है। प्रभु चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें कि किसी भी बात की चिंता न करें और हर एक बात के लिए प्रार्थना करें। काश मैं आपसे कह पाता कि मैं पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के समान स्वतंत्र हूँ, शहद इकट्ठा करती मधुमक्खियों के समान स्वतंत्र हूँ। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही बन जाएं। एक चिड़िया आकर हमारे पेड़ में से फल खाती है। मैं सोचता हूँ कि यदि वह मेरे पेड़ से फल खाती तो उचित ही है, क्योंकि वह मुझे रात में गीत सुनाती है। परंतु मेरे विचार में, मैं उसका गीत सुनूं या न सुनूं, उसे इसकी चिंता नहीं है। सच तो यह है कि वह मेरे लिए गीत नहीं गाती है, वह अपनी मादा की गीत सुनाती है जो अंडों पर बैठी है, क्योंकि अंडों पर बैठना एक उबाऊ काम है। यही कारण है कि वह चिड़िया पूरी रात उसे गीत सुनाती है। एक रात 2 बजे मेरी नींद खुली और मैंने सुना, ओह, वह अपनी मादा को कैसे गीत सुना रही थी। अति मन भावन गीत था। एक दिन मैं बरामदे में बैठा उस चिड़िया को देख रहा था। उसने मुझे तिरस्कार से देखा और जाकर पास के एक पेड़ में से फल खाने लगी। उसने मुझसे अनुमति नहीं ली। वह स्वतंत्र है, वह जानती है कि फल उसके लिए है। मेरे मित्रों, क्या हम परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं? किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। पौलुस प्रार्थना को अंधेरे में कूदना नहीं मानता या बनाता है। उसकी प्रार्थना एक आधार पर स्थिर रहती है। विश्वास सुनने से और सुना परमेश्वर के वचन से है। प्रार्थना विश्वास पर और विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। पौलुस कहता है कि जब आप परमेश्वर के सामने निवेदन लाते हैं तो उसे धन्यवाद कहें, उसी पल वहीं उसे धन्यवाद दें। कुछ टीकाकार कहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर पाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, परंतु पौलुस यह नहीं कहता। वह कहता है कि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तब उसे धन्यवाद दें कि उसने प्रार्थना सुन ली है और उत्तर मार्ग में है। मेरे प्रियो, अब आप शायद सोच रहे होंगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर ना दे क्योंकि मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है। मेरे मित्रों, मैं नहीं मानता कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई हैं, और मैं यह भी विचार करता हूं कि यह लज्जा की बात है कि हम कहें कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। आपने प्रार्थना की और आपको मुंह मांगी वस्तु नहीं मिली, यह प्रार्थना का उत्तर ही तो है। मैं एक घरेलू उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिसने कहा कि उनके पिता विश्वासी नहीं थे, परंतु वह एक अच्छे व्यक्ति थे, एक पिता थे। वह कपास अलग करने वाली एक मशीन चलाते थे, और जब मेरा मित्र छोटा था तो मैं भी वहां जाता था और उनसे टॉफी मांगता था। वह अपनी जेब में हाथ डाल करके मुझे टॉफी देते थे। एक दिन मैंने उनसे साइकिल मांगी तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है। उनका उत्तर था नहीं। मैं आज आपको बताता हूं कि उसने अपने पिता से जो भी मांगा उसका उत्तर उसे मिला। उनका उत्तर था नहीं। हाथ से अधिक प्रभावी था। उनका नहीं बात को वहीं समाप्त कर देता था। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के युवा नहीं के बाद भी विवाद करना क्यों चाहते हैं। मेरे पिता एक बार नहीं कह देते थे तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। मैंने सीख लिया कि मेरी अधिकांश मांगों का बुद्धिमानी का उत्तर था नहीं, जबकि मैं उस समय उसे समझ नहीं पाता था। यहाँ तथ्य यह है कि उन्होंने मेरे प्रत्येक निवेदन का उत्तर दिया है। परमेश्वर के पास भी अनेक बिगड़ी संतान हैं। वह नहीं कहता है तो अप्रसन्न होकर वे कहते हैं, परमेश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। आप परमेश्वर से सब कुछ कह सकते हैं, बड़ी छोटी बात सब कुछ। अब आप कैसे जानेंगे कि बड़ी बात क्या है और छोटी बात क्या है? वे सब परमेश्वर के लिए छोटी बातें ही हैं। मैं आपको एक और घरेलू उदाहरण देता हूं। जब पनामा नहर बन रही थी तब कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जाता था, परंतु उनके परिवारों को उनके पास आकर रहने की सुविधा प्रदान की जाती थी। एक इंजीनियर के साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा वहां रहते थे। अब वहां मलेरिया का भय था, इसलिए उन्हें एक शिकारे में रहने को कहा गया। एक दिन वह इंजीनियर अपने नक्शे फैलाकर उनका अध्ययन कर रहा था और उसका बच्चा वहीं अपनी खिलौने की कार के साथ खेल रहा था। अचानक ही वह बच्चा रोने लगा क्योंकि उसकी गाड़ी का पहिया निकल गया था। उसने कोशिशें तो बहुत की परंतु वह उसे सुधार नहीं पाया। अब क्या वह पिता उसे कमरे से बाहर भगा देगा या उसकी माँ से कहेगा कि उसे वहां से निकाल ले जाए क्योंकि वह उसके काम में बाधा डाल रहा था? जी नहीं, उसने अपने नक्शे एक ओर किए और उस बालक से पूछा कि समस्या क्या है। उस बच्चे ने एक हाथ में अपनी गाड़ी और दूसरे हाथ में उसका पहिया पकड़ा हुआ था। पिता ने उसे तुरंत सुधार दिया और उसे दे दिया। वह खुशी खुशी खेलने लगा। वह एक अच्छा पिता था। मेरे मित्रों, यह पिता परमेश्वर ही है जिसने पिता के मन में वह अनुकंपा स्थापित की है, क्योंकि वह स्वयं एक दयालु पिता है। इसी प्रकार आपकी जीवन गाड़ी का पहिया निकल जाता है तो आपको वह एक असंभव काम दिखाई पड़ता है, परंतु परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर उत्तर देता है। यदि वह कहता है नहीं तो वह आपके लिए लाभकारी है। कई बार लोग अपने सांसारिक पिता को खो देते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात वे अकेलेपन को महसूस करते हैं। अनेक वर्ष बिना परमेश्वर के वे रहते हैं और अंत में वे जान जाते हैं कि उनका एक पिता है जो स्वर्गीय पिता है। मेरे प्रियो, हमने इस बात से सीखा है कि उसके पास अपने निवेदन लेकर हम जा सकते हैं और वह सुनेगा। और जैसा मेरा सांसारिक पिता सुनता था, परंतु उससे भी अधिक बार वह हमें उत्तर देता है। सेवा की अपनी युवावस्था में मैं एक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कलीसिया में प्रचार करने के लिए गया। उन्होंने मुझे नियुक्ति के लिए जांचने हेतु बुलवाया था। उस रविवार दो आराधनाओं में प्रचार करने के पश्चात मुझे नियुक्ति के लिए बुलाया गया, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि कलीसिया को मेरी आवश्यकता नहीं थी। वे जो चाहते थे वह एक राजनीतिज्ञ था और मेरी बुलाहट राजनीति की नहीं थी। मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे वहां नियुक्ति न देकर परमेश्वर ने एक महान भूल की है। अनेक वर्षों बाद मैं अपनी पत्नी के साथ वहां पर गया कि उनका समाचार जानूं। वह कलीसिया मुक्त विचारवादी हो गई थी। वहां के कार्यकलाप मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। मैंने अपनी पत्नी से कहा, आपको स्मरण है कि मैं यहां नियुक्ति के लिए आया था। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे नहीं कहकर सही उत्तर दिया। मैं सोच रहा था कि प्रभु ने मुझे एक महान अवसर से वंचित कर दिया है। मेरे प्रियो, उसने मुझे हतोत्साह किया। मैंने परमेश्वर को दोषी ठहराया, उस पर दोष लगाया, उसमें गलती निकाली। मैंने तो यहां तक कह दिया था कि परमेश्वर मेरी सर्वोत्तम भलाई नहीं जानता है। उसने वह द्वार ऐसा बंद कर दिया था। कि उसके बंद होने की आवाज वर्षों मेरे कानों में गूंजती रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया था और आज मुझे लज्जा आती है कि मैंने उससे उस समय धन्यवाद नहीं दिया। अतः आपके लिए मेरा परामर्श है यह कहने की अपेक्षा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, आप कहें मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरी प्रार्थना सुनी और कहा नहीं, जो सही उत्तर था हमें धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रखना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्री 4:7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र में अन्य प्रकार की शांति का उल्लेख भी है जिन्हें हम समझ सकते हैं। विश्व शांति भी है। हमें आश्वासन दिया गया है कि एक दिन शांति संसार में व्याप्त हो जाएगी, जैसे समुद्र पानी से भरा होता है। यह शांति प्रभु यीशु शांति के राजकुमार के द्वारा लाई जाएगी। एक और शांति है जो पापों की क्षमा पाने के बाद मन में व्याप्त हो जाती है। रोमियों की पत्री 5:1 में हम पढ़ते हैं, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल अर्थात शांति रखें। और एक शांति है जिसका उल्लेख प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 में किया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जी हाँ, यह एक आश्चर्यजनक शांति है, परंतु यह शांति वह नहीं जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसे समझाऊं, परंतु मैं यह जानता हूँ कि यह वह शांति है जिसमें हम सदैव वास नहीं करते। मेरे विचार में यह वह शांति है जो कभी कभी हमारी आत्मा को प्राप्त होती है। मैं एक दिन पहाड़ की ऊंचाई से पहाड़ों में सूर्यास्त देख रहा था। परमेश्वर की सृष्टि के इस विभव को देखकर मेरे मन को कैसी शांति प्राप्त हुई मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। यह शांति सारी समझ से परे है। यही शांति मेरे मन में उस समय व्याप्त हुई जब परमेश्वर ने मुझे एक गंभीर बीमारी होने दिया और मैं अस्पताल में इलाज के लिए गया तो भय से भरा हुआ था, परंतु जिस रात मैंने सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया और कहा कि मैं उसे सच्चा देखना चाहता हूँ, उसने मुझ पर अपने आप को सच्चा सिद्ध किया और मुझे वह शांति प्राप्त हुई जो सारी समझ से बाहर है। यह शांति मेरी आत्मा से व्याप्त हो गई। मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु कह सकता हूँ कि यह अति अद्भुत अनुभव था। मेरे प्रियो, यह शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कुछ लोगों का कहना है कि प्रार्थना बदलाव ले आती है। मैं इस विषय में विवाद नहीं कर सकता क्योंकि प्रार्थना निश्चय ही बदलाव लाती है, परंतु प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। स्मरण रखें कि हमने इस गद्यांश में चिंता और तनाव के साथ प्रवेश किया था और अब हम शांति के साथ इसमें से उभर रहे हैं। इन दोनों के मध्य प्रार्थना ही थी। क्या आपकी परिस्थितियों में बदलाव आया है? लगता तो नहीं है। आंधी तो अब भी चल रही है, लहरें उठ रही हैं, गर्जन उठ रही हैं। आंधी तो नहीं थमी, परंतु व्यक्ति के मन में कुछ अवश्य हुआ है। मनुष्य की आत्मा और चित्त में कुछ अंतर लाने वाली बात हुई है। अपनी चिंताओं के कारण हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे चारों ओर सब कुछ बदल दे, हमें यह दे, हमें यह ना दे, यह होने ना दे, यह द्वार खोल दे, जबकि हमें प्रार्थना करना है। हे प्रभु, मुझे बदल दे। प्रार्थना सामर्थ का भेद है। हम चिंताओं के साथ प्रवेश करते हैं और शांति के साथ निकल आते हैं। आनंद सामर्थ का स्रोत है और प्रार्थना सामर्थ का भेद है। मेरे प्रियो, यदि हम इस बात को समझ गए और समझ पाते हैं तो निश्चय ही जानिए कि हमारे जीवन में भी अद्भुत शांति होगी और हम परमेश्वर के और निकट होंगे, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके निकट रहें। अर्थात प्रार्थना के द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में आनंद और शांति होती है। क्या आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शांति और आनंद हो जाए? यदि हाँ, तो आज आप परमेश्वर के निकट आएं, प्रार्थना में उसके पास आएं और उस आनंद को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें ताकि आप शांति प्राप्त कर सकें, प्रार्थना में समय दे सकें। प्रभु आप सबके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
धन्य है जो नम्र होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी, ओ धन्य है जो नम्र होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी, धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। जो दयावान है उन पे की जाएगी दया, ओ धन्य है वो जो दयावान है उन पे की जाएगी दया, जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाए। सुनो धन्य।